कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार के हमारे कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 69 और 70 की बात चल रही है। यहाँ तो हम जानते हैं कि यह जीव अनादि काल से स्वयं कर्ता बन रहा है और उसका कर्म कहो या उसका कार्य कहो, वह शुभ राग या अशुद्ध परिणति करना या शुभ या अशुभ भावों का मैं करता हूं ऐसा मानना, यह उसका अनादि से चल रहा है। यहां पर यह समझा रहे हैं जो हमने जीव अजीव अधिकार में देखा था कि वह परद्रव्यों का कर्ता नहीं है। अब यहां परद्रव्यों में वहां एकत्व और ममत्व बुद्धि थी, अभी इस कर्ता कर्म अधिकार में परद्रव्यों में इसकी कर्ता भुक्ता की वृत्ति है, उसको ये यहां निषेध कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है गाथा 50 से लेकर आगे अब तक ये परद्रव्यों में उन्होंने रंग राग और भेद को परद्रव्यों में डाला है, तो यहां परद्रव्य में विशेष रूप से तो ये राग द्वेष की जो परिणति है उसका यह जीव स्वयं को कर्ता मानता है वह उसकी भूल है, ये बात यहां हमें बता रहे हैं। यहाँ से हम बहुत बार देखेंगे कि यहाँ अज्ञानी की मान्यता क्या है और साथ साथ ज्ञानी की मान्यता कैसी है, इसका विवेचन हमें वारंवार देखने को मिलेगा। देखो कई बार तो ऐसा आरोप आता है कि ये समय सार सबको पढ़ने जैसी बात नहीं है, ये तो मुनियों को पढ़ने के लिए है। समय सार पढ़ने से हम तुम भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसे किसी जीवों को भय लगता है और इसलिए समयसार पढ़ने से वे हमें परावृत्त करते हुए देखने में आते हैं। तो यहां तो बात ऐसी कि हर बार अज्ञानी की कैसी मान्यता है ये बता रहे हैं, वो अज्ञानी की मान्यता किसी ज्ञानी को बताएंगे क्या अज्ञानी को, ख्याल में है ना? यानी तू ऐसी मान्यता छोड़ जिसकी मान्यता ऐसी नहीं है, ऐसे ज्ञानी जीवों को बताएंगे या अज्ञानी को? जो चोरी नहीं करता है, बिल्कुल साव है, उसको चोरी कभी मत करना ऐसा कहेंगे हम? ख्याल में है ना? तो यहां तो बता रहे कि भाई यहां अज्ञानी कैसा रहता है, उसकी कैसी कैसी मान्यता है, उस बात का यहां विवेचन है और लोग कहते हैं कि समयसार मत पढ़ो, ख्याल में? तो यहां देखो क्या कह रहे हैं, ये हम पृष्ठ क्रमांक 15 कौन से प्रवचन रत्नाकर भाग चौथा उसके पृष्ठ क्रमांक 15 पर हम आए हुए। देखो आए कहे छे, यहां से बात चल रही है लास्ट पैराग्राफ कि आत्मा ने क्रोधादि आश्रवो ने संयोग सिद्ध संबंध छे। तो कल एक बात आई थी कि तादात्म्य सिद्ध संबंध है, तो किसका किसके साथ है दीपेश भाई? यहां पर किसका बताया? हाँ आप बताएंगे। बहुत अच्छा, आत्मा और ज्ञान इन दोनों में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, आत्मा और राग, यानी यहाँ आश्रवों को लिया है। आश्रवों में राग के साथ द्वेष भी आएगा, क्रोध मान माया लोभ सभी आएंगे, ख्याल में। तो इसलिए कहते हैं वो संयोग सिद्ध संबंध जे छता पोताना अज्ञान भाव ने लीधे ज्यां सुधी तेमनो एटले स्वभाव ने विभाव नो विशेष जाणतो नथी, भेद देखतो नथी, त्या सुधी ते अज्ञानी निशंकपने विकारी भावोमां आश्रवोमां पोतापने वर्ते छे। वहां पर ज्ञान और आत्मा, यानी आत्मा और ज्ञान, तो उस ज्ञान में यह निशंकता वर्तता है, अपना स्वभाव भाव है। उसी तरह वहां तो अज्ञानी वर्तता था, ज्ञानी वर्तता था, यहां तो अज्ञानी क्या समझ रहे, ये राग द्वेष ये मेरा स्वभाव है, उसमें स्वभाव विभाव की तफावत वह नहीं जानता है और उस रूप ही मैं हूं, ऐसे उसमें निशंक बने वो वर्तता है। पुण्य पापना भाव, दयादान व्रता आदि ना शुभ भाव, अने आत्मा ने स्वभाव सिद्ध संबंध नथी, पण संयोग सिद्ध संबंध छे। स्वभाव सिद्ध यानी नित्य तादात्म्य कहो या तादात्म्य सिद्ध संबंध कहो। पंचाध्यायी मां आ शुभाशुभ विकारी भावों ने आगंतुक कहा छे। ये गुजराती लोग आगंतुक का अर्थ तो समझते होंगे कि जिसको नहीं बुलाया होगा, ऐसे अपने घर में पार्टी चलती होगी और हमने खास करके पर्टिकुलर लोगों को ही बुलाया होगा, तो उसमें कोई अंदर घुस जाता है जिसको नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया, हम नहीं चाहते कि उसको बुलाना है, फिर भी वो आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, आगंतुक। ऐसे ही है ना अर्थ गुजराती में, ये दिए तुम आगे पढ़ के आए हो, बहुत अच्छा। क्या कहते देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ये तो मैंने जो ये जो भाव किया है, मैंने जो अर्थ बताया वो मराठी में आगंतुक जो कहते हैं उससे किया है, इसलिए तो मैंने बार बार पूछा कि गुजराती में भी ऐसे ही अर्थ होता है क्या। आगे लिखा है पढ़ेंगे। हाँ क्या कहते हैं, आगंतुक एटले एक समय पूरता नवा मेहमान तरीके आवेला भाव कया छे। यहाँ उन भावों की अपेक्षा से उनको यहाँ कहा है कि जो एक समय पूरते आते हैं जाते हैं, यानी वो मेहमान है, जो मेहमान है वो आते हैं और जाते हैं, और जो हमेशा घर में रहते हैं वो घर के लोग हैं, ऐसे मेहमानों की बात। संयोगी भाव कहो के आगंतुक कहो, एकज अर्थ छे। हवे ज्यां सुधी पोताना अज्ञानपना ने लीधे, एटले कर्म ने लीधे एम नहीं पण पोताना अज्ञान ने लीधे रागादी विभाव भावो अने अखंड एक रूप चैतन्य स्वभाव ए बन्ने नो भेद अज्ञानी जाणतो नथी, त्यां सुधी ते निश्चंकपणे विभाव मां एटले विकार मां पोतापने वर्ते छे। आहा आत्मानो स्वभाव तो शुद्ध चैतन्यमय अमृत स्वरूप छे, पण अज्ञानी ने एनो कदी अनुभव नथी, तेथी ज्ञानते हूं एम न जानता, राग विकारते हूं एम माने छे, अने तेथी रागादि विकार मां पोतापने वर्ते छे। अरविंद भाई कल आगंतुक का अर्थ देख के आना डिक्शनरी में, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन यहां उसको एक समय पूर्ता कहा है, आगे मेहमान भी दिया है, लेकिन आगंतुक देख लेना कल वो क्या कह रहे, देखो तेथी रागादि विकार मां पोतापने वर्ते छे, कौन अज्ञानी। पण भाई राग ये तो झेर छे बापू, झेर पीता पीता अमृत एटले आत्मानो स्वाद न आवे, यानी राग करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, क्या मारेगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। झेर पीता पीता अमृत नो स्वाद न आवे, राग छे ए रोग छे, अने राग मारो एवो मिथ्यात्व भाव महान रोग छे। कयुं छे ने के आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। ये कहू छे ने, किसने कहा है मालूम है आपको? श्रीमद जी ने कहा है। क्या कहा? कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, यानी उसके लिए कोई इलाज देने वाला होगा डॉक्टर तो वह सदगुरु ही है। अनादिनो इने आत्मभ्रांति नो रोग लागू पड़ियो छे, ते मटाड़वानी आ वात चाले छे। देखो अब यहां क्या कह रहे हैं कि अनादिनो आत्मभ्रांति एटले पोताना स्वरूपना विषय भ्रांति छे, ते कोने होय? अज्ञानी ने होय ने। पछी लोको के ना मुनि ने वाचवा जेवू छे। अब ये कहां से बात आई? चल में है। आत्मा अंतरमा स्वभावथी भगवान स्वरूपे बिराजे छे, तेने भूलीने अज्ञानी निश्चंक रीते क्रोधादि विभावोमां पोतापने वर्ते छे, अने त्यां क्रोधादिमां पोतापने वर्तता ते जो कि क्रोधादि क्रिया परभावभूत होवाथी निषेधवामां आवी छे, तो पण ते स्वभावभूत होवानो तेने अध्यास होवाथी एटले एवी मान्यता होवाथी क्रोध रूप परिणमे छे, राग रूप परिणमे छे, मोह रूप परिणमे छे। शुं कयुं? क्रोधादि क्रिया परभावभूत होवाथी निषेधवामां आवी छे। व्यवहार रत्नत्रयना परिणाम, दयादान व्रतादिना परिणाम संयोगी भाव होवाथी परभावभूत छे। संयोगी भाव ने संयोग को देख देख कर उत्पन्न होने वाले परिणाम, तेथी ते विकारी क्रिया निषेधवामां आवी छे। ये राग करना इसको विकारी क्रिया कहे हो, ये कोई शारीरिक क्रिया की बात नहीं है। छता ते रागनी क्रिया मारी पोतानी क्रिया छे एम मानवानो तेने चिरकाळथी अध्यास छे। आहा हा, राग छे ते मारो स्वभाव छे एम मानवानी अज्ञानी ने टेव एटले आदत थई गई छे। तेथी जेम विष्टाना कीड़ा ने फरी फरी ने विष्टामां जवानी टेव पड़ी गई होय, तेम अज्ञानी ने वारंवार क्रोध रूपे राग रूपे अने मोह रूपे परिणमवानी टेव पड़ी गई छे। ते प्रमाणे ते निश्चंक क्रोध रूप परिणमे छे, राग रूपे परिणमे छे, मोह रूपे परिणमे छे। आ रीते ते रागादिमां एकपणे परिणमतो मिथ्यात्वना भाव रूपे परिणमे छे। ये तो एक प्रथमानुयोग में कथा आती है, आपको मालूम है ना सबको? यहाँ की जो बात बताई ना, विष्टानो कीड़ा ये विष्टामां ज रहेवा मांगे छे, यानी क्या कह रहे हैं, जिसको जिस बात की आदत हो गई है। अब यहाँ तो वहां तो बात अलग ही है, वहां पे जिस पर्याय में जो जीव होगा उस रूप ही स्वयं को मानता है, इसलिए वो बात बताई जाती है। यहां तो ये कह रहे हैं कि जहां जिस माहौल में रहता है उसको वही पसंद आता है, उसके लिए भी एक कथा है। दूसरी कथा बताएंगे। एक राजा था, राजा क्या था कि वो रात को भेष बदलकर पूरे राज में घूमता फिरता था। तो वहां क्या हुआ कि पहले के जमाने में उस गांव में एक, आपकी भाषा में कहना तो वाघरण थी, वाघरण गरीब कोई स्त्री भीख मांगने वाली, तो उसको देखकर वो राजा मोहित हुआ और उसको बुलाकर उसने उससे बोले कि ये सब कपड़ा वपड़ा फेंक दो, चलो नहीं चाहिए, उसको एकदम अच्छे पटरानी के कपड़े वगैरह दिए। तो क्या हुआ, वो पहले तो बहुत दृष्ट पुष्ट सुंदर थी, अच्छी दिखती थी, लेकिन दिन ब दिन वह खाना पीना उसका बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया तो क्या करे। तो उस राजमहल की एक दाई यानी बूढ़ी स्त्री होती है ना, ऐसी सबका निगरानी रखने वाली, तो वो उसके पास गई और उससे पूछा, तुझे क्या तकलीफ है खाने पीने में, जो तूने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा ऐसी बातें तुझे मिलती है तो तू क्यों नहीं खाती है, भोजन करती क्यों नहीं है। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलने को राजी नहीं। तो बहुत पूछने के बाद कही कि देखो दाई माँ, मुझे तो रोज भीख मांग कर खाना मिले तो खाने में रस आता है, यहाँ तो मुझे बिना कहे सब मिलता है। तो तुम ऐसा करो, राजमहल के ऊपर जाओ और वहां जोर जोर से चिल्लाओ। तो वो वहां गई और कोई खावानु आपों ने बेन ऐसे टाइप का कोई उसने जोर से चिल्लाया, तो जब से खाना खाने को चालू हुआ, तो रोज जाती चिल्लाती और खाना खाती। तो यहां जो बात बताई कि जिसमें वो जावे तो वो गंदी बात है, फिर भी उसको उसी में मजा आता है, ख्याल में है ना। तो यहां जो कह रहे हैं कि उसको वारंवार क्रोध रूपे परिणमने की आदत है और वही उसको अच्छा लगता है, ये बात बता रहे हैं। हवे आई जे आत्मा पोताना ज्ञान भावने लीधे ज्ञान भवन मात्र जे सहज उदासीन एटले ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था तेनो त्याग करीने अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्ततो प्रतिभासे छे ते कर्ता छे। ये उसको उसको कर्ता भी जो कहा गया है वो भी उपचार से कहा है वो, नहीं तो आप कहेंगे नहीं नहीं साहब हम तो अज्ञानी है वो अच्छा है, कम से कम हम राग भाव का तो कर्ता है ना, लेकिन उसको उपचार से कर्ता कहा गया। ना ज्ञानी राग भाव का कर्ता है ना अज्ञानी राग भाव का कर्ता है, लेकिन अज्ञानी अज्ञान भाव से राग भाव का कर्ता स्वयं को मानता है नहीं मानता है वह। ज्ञान व्यापार थी भिन्न लक्षण वाला पुण्य पापना जे क्षणिक विकारो पर्यायमा थाई छे एज जाने पोतानो स्वभाव होय एम अज्ञानी माने छे। आम रागादि विकार थी एकत्व माननारो अज्ञानी ज्ञाता दृष्टानी सहज उदासीन अवस्था ने छोड़ी दईने रागादि विकारनो करता थाय छे। आहा वस्तुनो सहज चैतन्य स्वभाव तो एवो छे के एमाथी ज्ञाता दृष्टानी सहज उदासीन निर्मल अवस्था ज थाय विकारनी नहीं, केम के वस्तुमां विकार छे ज क्या। ज्ञान भवन मात्र, ज्ञान भवन एटले जाणवू 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 एटला मात्र, लिखा है ना आगे, अरे एटले जाणवू 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 एम सहज जाणन रूप ज्ञाता दृष्टाना परिणमनी क्रिया थवी जोईए, परंतु अज्ञान वडे तेनो त्याग करीने अज्ञानी क्रोधादि क्रियामां एकत्वपने वर्ते प्रवर्ते छे अने तेथी क्रोधादिमां प्रवर्ततो ते क्रोधादिनो करता छे। ज्ञानी ने पण पर्यायमां रागादि तो थाय छे ने, हा ज्ञानी ने पर्यायमां रागादि थाय छे थई जाय छे थाय छे ने क्या कहा थई जाय छे, परंतु ज्ञानी तेमां तन्मयपणे परिणमतो नथी। तन्मयपणे का अर्थ मालूम है ना आपको, हाँ तत्पने तत्मय तन्मयपणे हूँ रागादिनो करता छूं एम एने रागादिनो स्वामित्व नथी। ए तो पर्यायमां थता रागादिने जाणवापणे ज परिणमे छे, यानी क्या है वह उसका कर्ता नहीं है लेकिन वह परिणाम उसके ज्ञान के गेय है। जो मुनिराज अमृत चंद्राचार्य ने टीका ना कलश में टीका करवानो विकल्प उत्पन्न थयो पण ते विकल्पना कर्तापने परिणम्या नथी पण सहज जाणवापने ज्ञातापने परिणम्या छे। आय कहे छे कि अज्ञानी सहज उदासीन जानन क्रियानो त्याग करीने, सहज उदासीन यानी क्या के वो जो क्रिया हो रही है कौन सी? राग की जो क्रिया हो रही उसको वो जान रहे बस। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी सहज उदासीन जानन क्रिया नो त्याग करी ने राग, ये अज्ञानी की बात कर रहे हैं। अपना जो जानने का जो कोई स्वभाव है, वह भी स्वभाव कैसा है? जानने का स्वभाव, वह किसी से मतलब किसी के अपेक्षा से हो रहा है ऐसा नहीं, वह तो निरपेक्ष रूप, दूसरे की सहाय बिना ऐसे जो जानन रूप जो क्रिया हो रही है या होती है उसको अज्ञानी त्याग करता है और राग में एकत्व स्थापता है। क्या कहते हैं? राग में एकत्व स्थापी ने रागादि क्रिया में प्रवर्ते छे अने तेथी ते रागादि नो करता छे तेने ज्ञान प्रतिभासवा ने बदले एकला रागादिज प्रतिभासे छे जणाय छे अने तेथी रागादि मां प्रवर्ततो ते रागादि नो करता छे अने ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तन थी जुदा जे क्रियामान पने क्रियमान पने, ये कल भी गलती हुई थी, ये क्रियमान पने अंतरंग मा उत्पन्न थता प्रतिभासे छे एवा क्रोधादिक ते करताना कर्म छे। क्या कह रहे? देखो, निर्मल ज्ञान ना परिणमन थी अंतरंग मा उत्पन्न थता क्रोधादिक भाव ते मारा कर्म छे एम अज्ञानी माने छे। आत्मा गई, एक लाइन गई, क्या हो गया? फिर से, निर्मल ज्ञान ना परिणमन थी जुदा विरुद्ध लक्षण वाला जे पोता थी हूँ करूं छे एवा अभिप्राय थी कराय छे एवा अंतरंग मा उत्पन्न थता क्रोधादिक भाव ते मारा कर्म छे एम अज्ञानी माने छे। आत्मा करता अने क्रोधादि भाव ते मारु कर्म आ प्रमाणे अनंतकाळनी अनादिकाळनी अज्ञानथी थयेली आ आत्मानी कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे अने आज संसारनुं कारण छे। यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न मानकर अपने मान्यता के अनुसार उसको वैसा ही ऐसा मानना, यह तो कर्मबंध का कारण है। और ऐसी जो राग का जो मैं करता हूँ ऐसी जो उसकी मान्यता है, इसी को यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहा है, वह संसार का ही कारण है। आत्मा परनो अकर्ता छे केम के ते परथी भिन्न छे, बीजाने सुधारवा बगाड़वा ए तो अज्ञान भावे पन आत्मानु कर्म नथी। बापू आ समझेज छुटको छे हो। क्या कहा? कि हम तो क्या चाहते हैं कि हमारे कारण से पर सुधर जाए, और बहुत गुस्सा आया हो तो वो बिगड़ जाए उसका। यानी समझो कि हम कोई बहुत पैसा कमाता होगा तो उसके कैसा ना, मतलब उसकी नुकसान हो जाए, उसी में हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। या तो हम बहुत पैसेदार है, हमारे बाजू वाले को भी हम पैसेदार बनाने की कोशिश करते हैं। बाजू वाले को तो नहीं, अपने लड़के को, हाँ, वो पैसे वाला कैसा होवे। तो यहाँ क्या कहते हैं? देखो, इसके लिए मैं तो कहूंगा हुकमचंद जी भारिल जो अपने डॉक्टर साहब है, वो बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं अश्विन भाई? वो ऐसा कहते हैं, भाई साहब अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? 65-70 साल तक आ गए हम। अच्छा, अभी 65 साल पूरे हो गए? हाँ, तो फिर आप ऑफिस में क्यों जाते हो? नहीं साहब, ऐसा है ना कि जरा हम लड़के को ठिकाने पे लगा देवे तो अभी वो काम काज करता है तो बराबर करता है कि नहीं? तो आप मुझको एक जवाब देना, तुम्हारा लड़का लायक है या नालायक है? क्या कहते हैं? क्या बात करते हो? मेरा लड़का नालायक? बिल्कुल लायक है। तो वो लायक है तो कमाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? लायक है ना, तो उसको अपना नसीब लेके आए तो कमाएगा। और नालायक है तो तू चाहे जितना अब जो भी रुपया छोड़ के जा, एक दो साल में वो अपना रंग दिखाए बिना रहेगा नहीं, तो क्यों चिंता करते हो? जरा अभी जो कुछ बची खुची जिंदगी है वो अपने स्वरूप को समझने में लगा लो। ऐसा वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। तो यहां पर ये वास्तविकता है साहब, ये पर को सुधारने की बिगाड़ने की जो बात चल रही ना, तो हम तो पर को यानी अपने घर के लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये अभी मजे की बात बताता हूं, आज से 50 साल पहले की बात हो, आज की नहीं। कोई ऐसा बीमा एजेंट आता था, इंश्योरेंस एजेंट, तो लोग उससे भागते थे। क्यों? आजकल भी होते हैं? अच्छा, आज बुलाते हैं, अभी वो भी बंद होएगा। हाँ, घबराना मत, गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। तो वो क्या होता था कि वो तो आता था भले के लिए कि भाई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाल बच्चों के लिए ठीक हुआ, लेकिन वो LIC एजेंट आया तो भाग जाते थे। वैसे भी कई लोग हमसे भागते थे। आप पूछेंगे क्यों? कि कोई भी आवे तो हम उसको, अरे बोले भाई कि तू क्या कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय में आते जा, तेरा भला है उसमें, तू आने से मेरा कोई एक पैसे का फायदा है क्या? तू सुनेगा तो शायद तेरा हो सकेगा तो फायदा ही होगा। तो मेरे को पहले लोग बहुत मिलते थे आके घर घर में, घर से, लेकिन अभी तो कोई आता ही नहीं। और हम घर में गए तो TV लगा के बैठते हैं ताकि हम वो बात निकाले ही नहीं। ख्याल में शरद भाई, जब से हमने नक्की किया, जब हमें ये पता लगा कि हम किसी के पास भी जाके हम उसके धारे, तू बेटा अभ्यास कर, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तब से हमने निश्चित किया हमारे घर पर आके जो सुनेंगे उनको ही सुनाएंगे। ख्याल में है? तो यहां वही कह रहे हैं, ये क्या है, इस जीव के ऐसी बुद्धि है कि मैं पर का बिगाड़ कर सकता हूं और पर को सुधार सकता हूं। ये दोनों बात नहीं होनी है। जो होगी तेरे इच्छा के अनुसार तो कुछ नहीं होगी। कदाच ऐसा होगा कि तू इच्छा करेगा वैसा कार्य होगा, सुनना, और तू जैसा इच्छा करेगा वैसा कार्य भी नहीं होगा। तू इच्छा भी नहीं करेगा फिर भी वो कार्य होगा, और तू इच्छा भी नहीं करेगा और कार्य भी नहीं होगा। ये चार पॉसिबिलिटी के सिवा अन्य कुछ नहीं होता है। लेकिन ये वस्तु स्थिति यह जीव जानता नहीं है, इसलिए पर को सुधार बिगाड़ करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। क्या कहा? देखो, कहाँ आया था वो? एक दो तीन,
आत्मा परनो अकर्ता छे, ऊपर से या नीचे से तीसरा पैराग्राफ।
नहीं, पर वो वरने बिगाड़ू सुधारू कहाँ गया?
अज्ञान भाव, दूसरी लाइन।
अच्छा, आ समझे छुटको छे जो दक्षिण,
उसके पहले।
अच्छा, बीजा ने फर्स्ट लाइन में आया, बीजा ने सुधारवा बगाड़वा ए तो अज्ञान भावे पन आत्मानु कर्म नथी, बापू आ समझे ज छुटके छे वो, छुटको छे वो, यानी जब तक हम
नहीं। यहाँ ये बात खास बता रहे हैं कि अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, पर का तो कोई कर ही नहीं सकता। अज्ञान भावे पन परनो करता न थाय, परंतु अज्ञानी किसका करता हो रहा है? राग भाव का करता हो रहा है। अज्ञानी तो राग का भी करता नहीं है। हमेशा आती है कि बात, अज्ञान में अज्ञानी के राग का करता कहो तो कहो, ऐसे बहुत बार आया है शास्त्रों में, प्रवचनों में। परंतु परद्रव्य का करता तो कोई नहीं है, ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, परंतु अज्ञानी उस राग का करता होता है। और ये कर्ता कर्म भाव जो यहाँ अधिकार चल रहा है, उसमें ये अज्ञानी का जो रागादि के कर्तृत्वपना है उसको छुड़ाने का यहाँ प्रयोजन है। क्योंकि परद्रव्य का तो कोई करता है ही नहीं है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं है, परंतु अज्ञानी ने उस रागादि का अपने को वो करता माना है। रागादि अपना कर्म है, करने जैसा है ऐसे माना है, उसके साथ वो एकत्व मानता है, और वो एकत्व यहाँ छुड़ाया जा रहा है। इसलिए कहा यहाँ अज्ञान भावे पण आत्मानुकर्मणती, राग को अज्ञान भाव से अज्ञानी का कर्म कहा गया है क्योंकि वो उसको अपना कर्म मान रहा है, परंतु परद्रव्य का तो कोई कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है उसके साथ, यानी अज्ञानी कर्म को बांधता होगा, ज्ञानी नहीं बांधता है, तो ऐसा नहीं है। कर्म बांधने का जो चल रहा है वो पुद्गल का कार्य है, उसमें निमित्तपना होगा राग भाव का, परंतु जीव उस कर्म को कुछ नहीं करता है, कर्म की अवस्था स्वतंत्र है, परंतु जीव में राग का कर्ता कहो तो कहो किसको, अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। वो बात और आएगी आगे।
देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, आ समझे जो छुटको छे हो, यानी क्या कह रहे हैं अभी जो आपने, आपको तो बताया बहुत अच्छी बात डिटेल में, क्या बताया कि पर का तो ना ज्ञानी ना अज्ञानी कोई करता है ही नहीं, उसी तरह निश्चय से देखा जाए तो ज्ञानी या अज्ञानी दोनों ही राग भाव के करता नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा भी कहेंगे कि अज्ञानी राग भाव का करता है, ऐसा आपको कहना हो तो कहो, यानी तो है तो नहीं लेकिन कहो तो कहो, यानी वो अपने को मानता है इसलिए उसको आप कह सकते हो। अभी क्या कह रहे हैं, ये सही बात जब तक तुम नहीं समझते हो, आ समझे जे छुटको छे हो, यानी ये नहीं समझते हैं तो हमारी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। तो यहाँ लिखते हैं देखो, जोता नथी क्षण वार मा देह छोड़ीने चाल्या जाय छे, भाई आ समझा बिना ते क्या जशे क्या उतरशे। ये क्या है देखो, मैं आपको जरा दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि किसी को बोला जाए, यानी हम यंगर जनरेशन की अपेक्षा से कह रहे हैं कि अरे भाई जरा तू शास्त्र स्वाध्याय कर, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर, तो बहुतांशी लोग ऐसा ही कहते हैं कि अरे वो तो हम तुम्हारे जैसे बूढ़े होने के बाद करेंगे, अभी तो हमको उसमें कोई रस नहीं, अभी हमको पैसा कमाने दो, अभी हमको ये सारा सब कुछ करने दो, ये तो तुम्हारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हम करेंगे। तो इसमें दो अर्थ हो गए कि वो बूढ़ा हो जाए और वो ऐसा बीमारी से बीमार हो जाए कि उसको बहुत तकलीफ होती है, और उस वक्त तुम उसको जाके बोलना अरे ये जो तकलीफ हो रही है, तू तो आनंद का कंद प्रभु है, ये जो कोई तकलीफ है तेरे शरीर में है, तू शरीर से जुदा है, तो उस कितना सुनेगा, वो पहले जूते किधर गया मेरा ऐसा देखते बैठेगा, लेकिन हॉस्पिटल में जूते पहनने को अलाउड नहीं, इसीलिए यानी जब उसको विचार करने की शक्ति नहीं है, अभी जिंदगी उसकी अभी खत्म होने आई है, उस समय हम उसको ऐसा कहेंगे कि तू आत्मा के बारे में सोच, तू अपने स्वस्वरूप में एकाग्र हो जा, तो कब होगा वो ख्याल में, तो आ समझे जो छुटको छे हो। आगे क्या लिखते हैं, क्षण वार में फूत ही जाइस, यानी तेरा कब मौत आ जाएगा तुझे पता नहीं। मैं अभी नाम वाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे रिश्ते में एक, हमारी बहन समझ लो ना, रिश्ते में हमारी एक बहन बीमार पड़ी थी, अब उसके ऑपरेशन किया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसको ऑपरेशन करके बाहर लाया, बाहर लाया तो वो सुबह 5 बजे से ऑपरेशन किया, वो 10 बजे तक, 11 बजे तक ऑपरेशन हो गया, उसको बाहर निकाला। अब वो 2-4 घंटे में तो कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो फिर उसका हस्बैंड, वो स्त्री का, तो बेचारा रात को 8 बजे भोजन करने को चालू किया, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं था, अकेला ही था, और हम रात को गए थे मिलने को, सब काम निपटा किया, यानी दुकान वुकान बंद करके, तो वहां गए तो भाई चिल्ला रही थी जोर जोर से, शर्म नहीं आती है तुमको, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही और तुम खाना खा रहे हो। अब ऐसे जीव को तुम जाके बोलोगे, वो बेचारा सुबह से भूखा था, उसको वो नहीं सहा, क्योंकि वो तो बेहोश थी ना, तो बेहोशी में क्या पता लगे, वैसे ही वैसे यह जीव पर के कर्तृत्व में इतना बेहोश हो गया है, उसको ऐसे बुढ़ापे में तुम जाके समझाओ हाँ कि तू जुदा है और यह शरीर जुदा है, तू अपना आत्मा तो अनंत आनंद का कंद है, यह तो गुणों का गोदाम है, जो भी तुम सिखाओ उसको क्या होगा। तो ये तो जब तक तुम चेत सकते हो जितने जल्दी उतने जल्दी चेतो, जब तक तो कह रहे कि तुम्हारे पांच इंद्रिय व्यवस्थित काम कर रहे हैं तब तक तुम समझ जाओ, नहीं तो भाई मेरा क्या बोलते हैं इधर घुटना दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे को मोतिया आ गया है हा? तो वो कितना घंटा स्वाध्याय कर सकेगा। ये कहते हैं कि भाई देखो कितने बढ़िया बात लिखी, जोता नथी तो हम तो दूसरे को ही जोते हैं, अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि क्षणवार मां देह छोड़ी ने चाले जाय छे भाई, आ समझा विना ते क्या जशे, ते एटले जे छोड़ी ने जवा वारो जीव छे ते क्या उतरशे, क्या उतारो थशे, अने उसको कौन सी पर्याय प्राप्त होगी, कहां जाके वो ये खड़ा रहेगा।
अभी जो बात की ना ये हाँ। बीमार होते और कोई उपदेश करते तो उसके लिए दृष्टांत देते, जैसे अभी कोई बहुत बड़ा महापूर आया, जैसे अभी सुनामी आया ना, तो उस समय कोई तैरने को सीखेगा उसमें परंतु जो पहले तैरना सीख गया हो तो महापूर में वो तैर के बचाव कर सकता है अपना। वैसे अभी मरण सामने दिख रहा है और तब जाके वो नहीं तब मैं सीखूंगा तो ये नहीं होगा। जिसने पूर्व यानी पहले से ही तत्व ज्ञान को अंगीकार किया है, समझा है, उस पर बार बार विचार किया है, चिंतन किया है, तो उसके मरण के समय में वो निराकुलता रह सकती है, उसका विचार आ सकता है। परंतु अभी बहुत भयभीत हो गया है या कुछ पता ही नहीं उसको तत्व ज्ञान का, और जाके किसी को ये समझाओ तो वो उल्टा चिढ़ जाएगा उसे और अरुचि हो जाएगी।
तो यहाँ जो कह रहे हैं ना क्या उतरशे, यानी कौन से पर्याय में वो अभी उसका जन्म होगा, स्वरूप ने समझा बिना आ कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति उभीज रहे छे, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी, जब तक अपने अकर्ता स्वभाविका ज्ञान श्रद्धा और आचरण नहीं होगा तब तक ये चलेगी। अने जा सुधी जन्म मरण नी परंपरा उभीज रहे छे, ये कहते ये कब तक रहेगा, तो जब तक ये तुम्हारी जन्म मरण की परंपरा है तब तक ये सारा चलेगा, तभी ये जन्म की परंपरा जन्म मरण की परंपरा चालू ही रहेगी। स्वरूप समझेज जन्म मरण नो अंत आवे ते वो छे। देखो अभी हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी जी चालू विषय में एक बाहर की बात क्यों डाल रहे हैं, तो वास्तव में बाहर की बात नहीं है, वो उसी से लगती हुई बात है, ख्याल में हवे कहे छे, ए रीते पोताना ज्ञान ने लीधे कर्ता कर्म भाव वड़े क्रोधादिमा वर्तता आ आत्मा ने तेज क्रोधादि नी प्रवृत्ति रूप परिणाम ने निमित्त मात्र करीने पोते पोताना भाव थी ज परिणमतु पौद्गलिक कर्म एकटू थाय छे, यानी वो कर्म बांधता है। जो आत्मा अज्ञान भावे क्रोधादिनो करता थाय छे त्यां ते क्रोधादि परिणाम ने निमित्त मात्र करीने पोताना भाव थी ज पुद्गल कर्म बंधाय छे, राग द्वेष के परिणाम कर रहा है तो उसके तो पुद्गल बंधेंगे, द्रव्य कर्म बंधेगा ही, निमित्त मात्र करीने एम कही छे ने, एनो अर्थ ए के निमित्तनी उपस्थिति छे, बस एटलू ज जीवने क्रोधादि भाव थाय छे माटे त्यां कर्म एकठू थाय छे एम नथी, कर्म कर्मना रजकणना सामर्थ्यथी बंधाय छे, रजकणमां परिणमवानुं सामर्थ्य छे। लख्युं छे ने के पोते पोताना भावथी ज परिणमतुं पौद्गलिक कर्म एकठू थाय छे, अहो आ तो स्वतंत्रतानो ढंढेरो छे, आवी स्वतंत्रतानी वात दिगंबर धर्म सिवाय बीजे क्यांय नथी। अरे दिगंबरमा पण आ काळे एने समझावनारा बहु अल्प अच्छा समझावनारा नहीं समझनारा तो आपको भी इंक्लूड कर दिया चलो अच्छी बात क्या कहते हैं दिगंबरमा पण आ काळे एने समझनारा बहु अल्प जीवो छे यानी ऐसा मत समझना कि हम मूल दिगंबर है तो हम सब कुछ जानते हैं क्यों यहां तो कहते कि दिगंबरमा पण देखो कहते हैं ना घर घर में माटी के ही चूल्हे होते हैं पहले के जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे ऐसे घर घर की बात ही जैसी है ऐसा कुछ नहीं है जीव अज्ञान व शुभाशुभ विकार भावे परिणमे छे त्यारे ते वक्ते कर्मपणे परिणमवानी पौद्गलिक कर्म रचकणोनी लायका छे तेथी स्वकाळे ते कर्मनी अवस्था थाय छे जीवना शुभाशुभ परिणाम ने लईने नवू कर्म बंधाय छे एम नथी शुभाशुभ परिणाम तो बाह्य निमित्त मात्र छे कर्म रचकणो पोतानी मेळे स्वतंत्र परिणमी जाय छे अभी ये क्या समझा रहे देखो हम इसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में जल्दी समझ जाए ऐसी बात करेंगे देखो ये विश्व तो अनादि अनंत है विश्व में छह द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य भी अनादि अनंत है जीव द्रव्य भी अनादि अनंत है अभी पुद्गल द्रव्य में चार भेद है उसमें से हम कर्म भी जो है कारमाण वर्गणा वह भी अनादि से है और ये द्रव्य जो है इन द्रव्यों का परिणमन निरंतर चालू है अब प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में है पर द्रव्य पर चतुष्टय में कोई एक द्रव्य का चतुष्टय पर चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता है ऐसी बात है लेकिन क्या होता है कि अनादि से पर्याय 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 से पर्याय जीव की हो रही है और यहाँ पुद्गल के कर्म की बात करेंगे उसकी भी पर्याय 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 यहाँ उसका भी बंद रूप होना है दोनों का समय एक है लेकिन वह दोनों एक क्षेत्र में आते हैं ना एक क्षेत्रों का संबंध है ना तो इसलिए कहेंगे कि जीव ने ऐसे परिणाम किए इसलिए ये ऐसा कर्म बंधा वास्तव कर्म की जो अवस्था निरंतर बदल रही है वो अपने स्वयं के कारण से अपने स्वचतुष्टय में हो रही है क्योंकि दो द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव है ये तो हम जानते हैं ख्याल में है ना लेकिन ऐसा उपचार से कहो या व्यवहार से कहो ऐसा कहने में आता है कि जीव ने राग परिणाम किए इसलिए उसके कर्म बंद हुआ अभी यहां कर्म का उदय हुआ और जीव ने उसको देख के राग भाव किए तो ऐसा जीव भी परालंबी नहीं है और कर्म भी परावलंबी नहीं है दोनों अपना अपना परिणमन अपने अपने कारण करते हैं ऐसा नहीं है कि एक समय में कर्म का उदय हुआ और दूसरे समय में जीव ने कर्म बांधे उसको या जीव ने परिणाम किए तो उसके बाद में कर्म बंद हुआ दोनों का समय एक है ये बात ध्यान में रखने जैसी है तो इसलिए कह रहे हैं पहली लाइन में कर्म रजकणों ने लायका छे तेथी स्वकाळे ते कर्म ने अवस्था थाय छे एक जीव के परिणामों के पहली लाइन में मैंने पढ़ा था जीव के परिणामों के कारण से नहीं इसलिए आगे लिखते जीवना शुभाशुभ परिणाम ने लई ने नवु कर्म बंधाय छे एम नथी तो क्या कह रहे शुभाशुभ परिणाम तो बाह्य निमित्त मात्र छे अने कर्म रचकणो पोतानी मेळे स्वतंत्र परिणमी जाय छे देखो द्रव्यानियोग की अपेक्षा से हम ऐसा जरूर कह सकेंगे कि आज तक जीव ने कर्म को छुआ नहीं ना कर्म ने जीव को छुआ है आज तक कर्म इस जीव ने बांधे ही नहीं और कर्णानियोग कहेगा कि हर समय जीव साथ कर्म तो बांधता ही है अभी निकली थी ना बात पहले 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 क्लास में ये निमित्त का कथन है उपचार का कथन है तो हर अनियोग की भाषा जुदी जुदी होगी पर हमें तो मूल बात को समझना है कर्णानियोग में तो निमित्त की बात से ही सारी बातें समझाई जाती है और द्रव्यानियोग में निमित्त की भी बात आएगी लेकिन वहां हमें मूल बात यानी जो निश्चय से कहा जाता है या समझाया जाता है उस बात को समझते हुए ये निमित्त का कथन को समझना चाहिए। नहीं तो अरे ये द्रव्यान युग में ऐसा कहा है कि अनंत भगवान ने चार अघाती कर्मों का नष्ट करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करी। मैंने क्या कहा? अघाती कहा? क्या बात है, मुझे नींद आ रही। इसका अर्थ है घाती कर्मों को नष्ट करके। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये तो द्रव्यान युग में लिखा है लेकिन वहां पर भी निमित्त का कथन है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहां पर भी वही बात बताते, अहो समय सारणी टीका अद्भुत अने अजोड़ छे, आवी बात सांभळवा मळे ए जीवनु महा सौभाग्य छे, अने तेनो भाव समझे ए तो न्याल थई जाय एवी आ चीज छे। तो मैंने अघाती कहा और आपने घाती समझा, तो आपको न्याल हो जाए ऐसी बात है, ऐसा कह रहे हैं। हमारा जो होना है सो देखेंगे, आप तो न्याल हो जाएंगे। क्या लिखा देखो, एनो भाव समझे। हा ज्ञान रूपे न परिणमता, राग रूपे परिणमयो, ए एनो स्वकाल छे माटे राग रूपे परिणमयो छे, कर्मनो उदय छे माटे राग रूपे परिणमयो छे एम नथी, तथा ध्यान रूपे परिणमता कर्मनो अभाव थियो। ज्ञान रूपे परिणमता एटले स्व ज्ञान रूप, एटले अपने स्वरूप में एकाग्र हुआ उसको ज्ञान रूपे परिणमता कहा। कर्मनो अभाव थियो माटे कर्म, ज्ञान रूपे परिणमता कर्मनो अभाव थयो माटे कर्मनो अभाव थयो तेथी ज्ञान रूपे परिणमयो एम पण नथी। ज्ञान ने आत्मा एक छे एम जे ज्ञान मा पोतापने वर्तो परिणमयो ते दर्शन मोहनो अभाव छे माटे परिणमयो छे एम नथी। यहां सब द्रव्यानियों की बात चल रही है, तथा दर्शन मोहनो उदय छे माटे मोह भावे परिणमयो छे एम पण नथी। बन्ने ने परिणमन द्वारा स्वतंत्र छे निमित्त छे, बस एटली वात छे। परमाणु मा कर्मरू अवस्था थवानो तेनो स्वकाल छे, तेथी पोतानी योग्यता थी कर्मरूप परिणमे छे। जीवना विकारी भावने निमित्त मात्र करीने कर्म पोते पोता थी ज परिणमतुं, क्या एकटू थाय छे। आ रीते जीवने पुद्गलो परस्पर अवगाह जेनु लक्षण छे एवा संबंध रूप बंध सिद्ध थाय छे। आई टीका मां पण तन प्रकारना संबंध कया छे, ज्ञान ने आत्मानो तादात्म्य सिद्ध संबंध, राग ने आत्मानो संयोग सिद्ध संबंध, कर्म ने आत्मानो परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। ये अवगाह सिद्ध संबंध को ही हमने दूसरा नाम कौन सा लिया था, एक क्षेत्रावगाह संबंध। वस्तु नो स्वभाव ज्ञान अने वस्तु ध्रुव आत्मा ए बेनो तादात्म सिद्ध संबंध छे, अने तेमा अभेद भावे परणम वुं ते धर्म छे। क्या कहा? अभेद भावे, भेद करके नहीं। राग अने आत्मानो संयोग सिद्ध संबंध छे, छता बेने एक बानी ने परणम वुं ते अज्ञान छे। कर्म ने आत्मानो एक क्षेत्रावगाह संबंध छे, एटले के कर्म ने आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्यापी ने सन्निकट रहे छे, एवा संबंध रूप बंध छे। जीवना परिणाम नु निमित्त पामी ने कर्मना पुद्गलो एक क्षेत्रे अवगाही रहे छे तो पण भाव थी तद्दन जुदा छे, यानी दोनों के लक्षण बिल्कुल जुदे जुदे है। एक क्षेत्रे रहे छे तेने परस्पर अवगाह जेनु लक्षण छे एवा संबंध रूप बंध कहेवाय छे। हवे कहे छे अनेकात्मक होवा छता अनादि एक प्रवापने होवा थी जेमाथी इतरे तराश्रय दोष दूर थयो छे एवो ते बंध कर्ता कर्मनी प्रवृत्तिनु निमित्त जे अज्ञान तेनु निमित्त छे। क्या कहते देखो, अनेक आत्मक एटले जीव पुद्गल नो एम बे द्रव्यो नो जे संबंध छे एमा इतरे तराश्रय दोष नथी केम के अनादि प्रवाह पनो छे। ये तो हमने पहले देखा था, लेकिन स्वामी जी अभी क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। आनाथी आ अने एनाथी ए, एने इतरे तराश्रय दोष कहे छे। यानी उन्होंने आपको बताया तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि मुझे बहुत जल्दी से बाहर जाना था तो मैंने पूछा कि मेरे सॉक्स जूते पेंट मेरे सॉक्स कहाँ है, तो उसने कहा कि जूते के बाजू में रखे हैं। तो मैंने कहा अरे भाई जूते कहाँ है, मुझे सॉक्स के बाजू में रखे हैं। तो वो इतरे तराश्रय दोष हो गया, दोनों ही नहीं मिल रहे ना, तो एक दूसरे के साथ रखने से क्या है। तो वैसे यहाँ कहते कि आनाथी आ एटले जीवे भाव करियो एनाथी कर्म बांध्या, अने कर्म बांध्या एनाथी एने जीवे भाव करियो। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले तो जीव ने परिणाम किए और वहां कर्म बंद हुआ और वही कर्म का उदय तत्काल नहीं होगा, दूसरे कर्मों का उदय हुआ और इसने नए कर्म नए भाव किए। ये अलग अलग है दोनों ही, तो इसलिए कहते कि ये केम के अनादि प्रवाह पणु छे। ये बात का ये जीवना राग परिणाम थी बंध, अने एज बंध थी राग परिणाम थाय तो इतरे तराश्रय दोष कहवाय। ये बात ख्याल में आ गई, क्या कहा जीवना राग परिणाम थी बंध, अभी जीव ने कोई परिणाम किया और वहां कर्म बंद हुआ तो कहे जाने एज बंद थी राग परिणाम था, यानी अभी जो राग हुआ वो उसी बंद के कारण से हुआ है, ऐसा अगर हम मानेंगे तो कहते हैं इतरे तराश्रय दोष होई छे। परंतु एम नथी, अज्ञानी जीव राग द्वेष रूपे परिणमे त्यारे नवा कर्म बंधा है अने ते अमुक स्थिति सुधी एक क्षेत्राव गाहे रहे, तथा जे राग द्वेष रूपे परिणमे छे एमा पूर्वना कर्मनो उदय निमित्त होय छे। आ प्रमाणे जे परिणाम थी कर्म बंद थयो ते बंद विकार परिणाम नो निमित्त थतु नथी, पण ते परिणाम मा जूना कर्मनो उदय निमित्त छे, तथा जे विकारी परिणाम थया ते नवीन कर्मनो नवीन कर्म बंधनु निमित्त थाय छे। आ प्रमाणे इतरे तराश्रय दोष नथी। ये बात समझ में आई क्या, पहले एक्सप्लेन की थी फिर भी अभी भी नहीं समझ में आई तो बताएंगे। दीपेश भाई ख्याल में आ गई,
वृक्ष और बीज वाला उदाहरण कल बताया था। देखो बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष में से फिर बीज उत्पन्न होते हैं, परंतु बीज में से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उस वृक्ष में से वे ही पुराने बीज नहीं उत्पन्न हुए, उस वृक्ष में से नए बीज उत्पन्न हो गए
और इस बीज में से भी नया वृक्ष
और उस बीज में से फिर वही वृक्ष नहीं उत्पन्न हो रहा, फिर और नया होगा। इसको ये प्रवाह रूप से कहते हैं, इसको अनादि कहेंगे। बीज में से वृक्ष में से बीज, इस तरह से। वैसे यहाँ अभी जो वर्तमान में राग परिणाम है उसके कारण नया बंध होगा। अब जो नया बंध है वो कौन से राग में निमित्त हो, उसी समय वाले राग में नहीं, वो बंद है तो वो अभी कुछ काल के लिए जीव प्रदेशों में रहेगा वो कर्म, और जब वो उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी तब वो उदय में आएगा, और तब उदय में आने वाला कर्म नए राग द्वेष में निमित्त होगी। यही बताना चाहते हैं कि पुराने कर्मों के उदय में अभी राग द्वेष हुआ, अभी जो राग द्वेष हुए उसमें नया बंद होगा, और वो बंद जब जाके उदय में आएगा तब फिर नए राग द्वेष होगी, इस तरह से। इसलिए इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, उसी राग से उसी वही बंद और उसी बंद से वही राग होता तो एक दूसरे को निमित्त कहें, परंतु ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ कल परसों भी हमने देखी।
हाँ, हाँ। देखो यहाँ पर एक इतनी अच्छी व्यवस्था है क्या कि जिसको हम विशेष सर्कल कहते हैं, वैसे इस जीव ने राग किया उसको बंद हुआ, बंद का उदय हुआ उसने राग किया, तो वही राग वही बंद और वही कर्म का उदय और वही राग, तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा होगा कि इस जीव ने अभी तो राग द्वेष के परिणाम किए और उसने कर्म बंध किया, लेकिन जिस वक्त वो कर्म बंध करेगा, कर्म का उदय आएगा, तब उसको राग रूप परिणाम ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। वह शुद्धोपयोग में चला जाए तो कर्म का उदय आया नहीं आया एक जैसा है, वो तो अपने स्वरूप में एकाग्र रहेगा। तो दो बातें होगी कि नए पुराने कर्म का उदय आ तो निकल गया, यह नया कर्म भी नहीं बन रहा है, तो जो साइकिल है, जो सर्कल है, वो टूट जाता है, भेद होता है। और इसी तरह यह जीव संसार से छुटकर मुक्तावस्था प्राप्त करता है, और उसके लिए अपने स्वरूप में एकाग्र होने की आवश्यकता है। और ऐसा आज तक अनंत जीवों ने किया है, इसलिए वो कोई बहुत डिफिकल्ट बात है ऐसी नहीं। अगर वो बहुत डिफिकल्ट होती तो इतने अनंत जीव मोक्ष नहीं गए होते, तो सहज है। लेकिन हमें लगता है कि हम कुछ कुछ करेंगे तो ही ये बात होगी, ऐसी बात नहीं है। पहला आत्मा शुद्ध हतो अने पछी विकारी थियो, पहला कर्म बंध नहोतो अने पछी थी कर्म बंधाया, एम नथी। अर्थात आत्माना विकारी परिणाम थी कर्म थया अने कर्म थी विकारी परिणाम थया, एम नथी। बन्ने अनादि थी स्वतः सिद्ध छे। बन्ने याने कौन? हाँ, आत्मा तो है, लेकिन उसके ये जो विकारी परिणाम है ना, वह भी अनादि से चल ही रहे। अनादि काल थी कर्म कर्म रूपे अने आत्माना परिणाम विकार रूपे स्वतंत्र पने थता आयवा छे, कोई थी कोई थया छे, एम नथी। अनादि थी पुराना कर्म खरता जाए अने एनु निमित्त पामीने जीव मा नवा नवा विकारी परिणाम थता जाए। ये खरता जाए लिखा है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? उदय थाय। ख्याल में? खरता जाए छे नो अर्थ ज उदय थाय छे। ये खिरना यानी निर्जरा होना मत समझना, निर्जरा का एक अर्थ ये भी होता है कि उदय होता है। नवा नवा परिणाम कहा गया? पुराना कर्म खरता जाए एनु निमित्त पामीने जीवमा नवा नवा विकारी परिणाम थता जाए छे, तथा एनु निमित्त पामीने नवा कर्म बंधाता जाए, एम प्रवाह छे। आ प्रमाणे अनादि प्रवाहपना ने लीधे जीव पुद्गल नो जे बंध थाय एमा इतरे तराश्रय दोष नथी। ये बात समझ में आ गई बराबर? अनादि काल थी आवो जे बंध छे ते कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नु निमित्त जे अज्ञान तेनु निमित्त छे। कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नु निमित्त अज्ञान छे। अने अज्ञान नु निमित्त पूर्वना जूना कर्मनो बंध छे। अज्ञान कई आत्मानो मूल स्वभाव नथी, अज्ञान एटले पर्याय स्वयं अज्ञान पर्याय स्वयं अशुद्ध उपादान छे अने तेनु निमित्त पूर्वनो कर्म बंध छे। यानी ये अज्ञान अपने पर्यायगत योग्यता से अज्ञान रूप परिणमती। और यहाँ कर्म का जो उदय हुआ अपने स्वयं के कारण से होने, वह उसको निमित्त कहा है, तेनु निमित्त पूर्वनो कर्म बंध छे, कर्म छे ते कई अज्ञान करावी दे छे एम नथी, परंतु पोते जा लगी राग द्वेष अज्ञान कर्या करे छे त्या लगी कर्म निमित्त थाय छे। निज चैतन्य स्वभावना लक्ष्य जेने अज्ञान टळी जाय छे तेने कर्ता कर्म प्रवृत्ति मटे छे अने कर्म बंध पण टळी जाय छे, तथा जे स्वभावना लक्ष्य प्रणमतो नथी तेने अज्ञान छे, तेने कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे अने नवो नवो कर्म बंध पण छे। आवी वात छे। बाकी की बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मां सकनु सदा गीत होए।